समय का सुंदर आख्यान के माध्यम से पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी के प्रवचन के उपरांत मैं सकल समाज की ओर से 108 पूज्य मुनिराज श्री क्षमा सागर जी के चरणों में शत शत नमस्तु करता हुआ उनसे विनय करूंगा कि हे स्वामी अपने धर्मोपदेश से हमें कृतकृत्य पर की अनुकंपा करें। हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल के सयाने खूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने खूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार इस बात पे विचार कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि को निर्मल करने के लिए जो जीवन शेष हमारा रह गया है उसमें हम क्या प्रयत्न करें। वैसे तो दृष्टि की निर्मलता के दो उपाय हैं, या तो हम अपने को समर्पित कर दें या फिर हम स्वयं दृष्टि को निर्मल बनाने के लिए संकल्पित हो जाए। वैसे जो समर्पित होते हैं वे भी अपने समर्पण के प्रति संकल्पित तो होते ही हैं, और जो व्यक्ति संकल्पित होते हैं वे बिना समर्पण के संकल्पित नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर ऐसा कहा जाए कि ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, एक ही है, तो भी कहा जा सकता है। हमें ये संकल्प अपने भीतर करना चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि को निर्मल बना लेना है। हमारी और बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं जिनको कि हम जीवन में पूरा करते हैं। हमारे जीवन में एक हमारा ध्येय ये भी होना चाहिए, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना है। हम नहीं बना सकते हैं, या आज वर्तमान में तो सम्यक दर्शन बहुत रेयर केसेस में होता है, ऐसा सोच करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाने वाले को तो कभी भी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। ये बात जुदी है कि हमारे तमाम पुरुषार्थ के बावजूद भी हमारी दृष्टि निर्मल हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन हम प्रयास ही ना करें यह भी ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी दृष्टि को निर्बल बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए, और फिर जो प्रक्रियाएं कही गई हैं उन प्रक्रियाओं के प्रति समर्पित भी होना जरूरी है। हमने पिछले दिनों वही समर्पण की और संकल्प की दोनों प्रक्रियाएं समझी हैं। सच्चे देवगुरु शास्त्र या वीतरागी देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने को समर्पित कर देना, उनका सानिध्य तो बहुत लोगों को मिला है। जो जितना उनके चरणों में अपने को समर्पित करता है वो अपनी दृष्टि को उतनी आसानी से निर्मल कर पाता है। इसलिए पहली जरूरत है कि हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने को समर्पित करें, जो उनके द्वारा कहे गए तत्व हैं उनका अभ्यास करें, और फिर अपने भीतर झांक करके देखें कि हाँ सचमुच मेरे अपने जीवन को मैं इन सात तत्वों में क्या हे है, क्या उपादेय है और क्या गे है, क्या जानने योग्य है, ऐसा विभाजन करके जो आश्रयबंध हे हैं और जो संवर निर्जरा उपादेय है उसका हम उपाय करें। आश्रय और बंध हम 24 घंटे करते रहते हैं निरंतर, और वो क्यों होते हैं? हमारे अहंकार और हमारे संक्लेश की वजह से। दोनों ही स्थितियों में हम कर्म का आश्रय और बंध करते हैं। हमारे भीतर अगर ये दृष्टि की निर्मलता आ गई कि सचमुच मेरे अहंकार और संक्लेश, अहंकार और संक्लेश समझते हैं आप, मेरे मन का काम हो जाता है तो अहंकार आ जाता है कि देखा सब मेरे अनुरूप चल रहा है, और जब कुछ भी हमारे मन का नहीं होता तो संक्लेश कर लेते हैं कि अरे यहाँ तो सब ऐसा ही है, बस इतना ही तो है। 24 घंटे यही करते हैं अपन, अपने मन का हुआ अहंकार अभिमान और अपने मन का नहीं हुआ तो संक्लेश। दोनों स्थितियों में कर्म का बंध होता ही रहता है निरंतर। हमें ये बात अब समझ में आना चाहिए, दृष्टि निर्मल बनाने के लिए या दृष्टि निर्मल बन जाने पर दोनों स्थितियों में ये बात समझ में आ जाने लगती है। हम पहले समझ लें तो हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए, हम दृष्टि निर्मल बना करके इसको समझ पाएं तो भी हमें अपनी श्रद्धा को, अपने इस दृष्टि की निर्मलता को, अपने सम्यक दर्शन को हमेशा जो है, जैसे किसी के हाथ में दर्पण आ जाए भैया तो दर्पण में अपना चेहरा दिखने लगता है, चेहरे में क्या क्या मलिनता है ये मालूम पड़ने लगती है, लेकिन अकेले दर्पण आ जाने से ही काम नहीं हो पाता। कई लोग तो उस दर्पण को ही पहुंचने लगते हैं अपने चेहरे की मलिनता को देख करके। वो दर्पण में थोड़ी लगी है, वो मलिनता मेरे भीतर है, इसलिए मुझे दृष्टि की निर्मलता आ जाने पर अपने भीतर की मलिनताएं दिखाई देने लगे, तो मुझे अपनी उन मलिनताओं को ठीक करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। दर्पण हाथ में आने के बाद रिस्क बहुत है, किसी भी क्षण धक्का लग करके नीचे गिर के टूट सकता है दर्पण। ठीक ऐसे ही हमें अगर दृष्टि की निर्मलता या सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो निश्चिंत नहीं हो जाइएगा, किसी भी क्षण वो छूट सकता है यदि हम थोड़े भी असावधान होंगे, या कि हो सकता है उस पर धीरे धीरे दर्पण पर जैसे धूल लगने लगती है फिर अपना चेहरा धुंधला दिखने लगता है, इसी तरह दर्पण की तरह जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है या सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसके बाद अगर वो व्रत नियम और संयम के माध्यम से उस दर्पण को पहुंचता नहीं रहता है तो उस पर मलिनताएं, चल मलगार दोष जिनको अपन कहते हैं, वो सब लगना शुरू हो जाते हैं, और 25 दोषों से मलिन जो सम्यक दर्शन है वो भी हमारे जीवन के कल्याण में सहयोगी नहीं हो पाता, इसलिए उसकी मलिनताओं को भी साफ करना जरूरी है। हमारी श्रद्धा दो तरह से मलिन हो जाती है, जब वो तामसिक होती है या कि राजसिक होती है। सच्ची श्रद्धा तो सात्विक ही होती है। तीन तरह की श्रद्धा का डिवाइडेशन नहीं कर रहा हूं। हमारी श्रद्धा में मलिनता कैसे आ जाती जब हमारी श्रद्धा तामसिक हो जाती? तामसिक श्रद्धा हमें आलसी बना देती है। हम जिनके प्रति समर्पित होते हैं उनसे ही सब कुछ अपना काम करवा लेना चाहते हैं। हमारी तो बहुत श्रद्धा है भगवान में, तो हम चोरी करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। हाँ, चोर भी भगवान के यहाँ जावे और कहे कि जी भगवान हमारो नरियल जो छत्र चढ़ाओ हमने और हम चोरी में सफल हो जाए, पकड़े न जावे, आप ख्याल रखियो हमारी बहुत श्रद्धा है आपके ऊपर, तो जा श्रद्धा का काम की हुई है जा बताओ। ये श्रद्धा जो है वो मलिन है, ये तामसिक श्रद्धा है। हमें कुछ करना ना पड़े, भगवान ही सब हमाओ कर देवे, ऐसी श्रद्धा रखने वाले भी बहुत लोग हैं जो अपना भगवान के ऊपर इस तरह का खुद आलसी हो जाएंगे और कहेंगे कि भगवान हमारे सब काम, तो भैया फुर्सत थोड़ी बैठी हमारे काम बना भी गिलाने, और वो भी ऐसे काम जो कि हमारे कल्याण में बाधक हैं बल्कि हमारा अकल्याण करने वाले हैं, ऐसे कामों के साधने में अपनी श्रद्धा का उपयोग न करना भैया। भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्र के प्रति जो श्रद्धा है वो हमारे जीवन को मलिन न करे। अगर ऐसी श्रद्धा जिसमें कि हम अपने संसार के काम पूरे करवाना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारी तो श्रद्धा, हमारे सब काम श्रद्धा से और आशीर्वाद से पूरे हो जाएंगे, तो ये श्रद्धा तामसिक श्रद्धा कहलाती। और एक और श्रद्धा है, हमारी तो बहुत एक श्रद्धा है, हम जो आकांक्षा करेंगे वो सब हमारी पूरी हो जाएंगी, ऐसे महत्वाकांक्षी बनाने वाली श्रद्धा भी है। या जो महत्वाकांक्षी लोग जब श्रद्धा कर लेते हैं तो वे, उनकी श्रद्धा को हम राजसिक श्रद्धा कहते हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं हमारी अपनी योग्यता से अधिक ही हुआ करती हैं। एम्बिशंस जितने भी हैं, अधिकांश एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं वे अपनी व्यक्ति की योग्यता से अधिक ही वो करता है, और उनकी पूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए देवगुरु शास्त्र का सहारा ले लेता है, उनके प्रति श्रद्धा भी कर लेता है। धम्मम भोग निमित्तम न दुसो कम्मक्खय निमित्तम, भैया ये जो श्रद्धा है उसके माध्यम से अपने विषय भोग की सामग्री इकट्ठी करने के लिए उसका उपयोग नहीं करना, नहीं तो वो श्रद्धा राजसिक श्रद्धा कहलाएगी। क्या करें, हम तो बहुत चाहते हैं कि जी सबने करें, लेकिन अब भगवान की ऐसी इच्छा है कि हम अच्छी बड़ी दुकान खोलें और ऊपर बैठें 24 घंटा, अब भगवान की ऐसी इच्छा है। और कई बार तो यहां तक हमने कहते सुना है कि हम तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ रहे, अब भगवान ही भाई चाहते हैं, इसलिए हमें वैसी मने वैसी हमारे अंदर में क्या कहते कि हमें नहीं, अरे हाँ कोई हमें ऐसी प्रेरणा हुई है, हमें आज सपने में ऐसा दिखाई पड़ा कि तुम तो लड़ जाओ राष्ट्रपति को चुनाव, जीत जाओ। हाँ ये क्या, ये तो हमने आपको ऐसे उदाहरण दे दिए। ऐसा अपन अपने मन में कई बार ऐसे विचार कर लेते हैं, इससे सावधान रहना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए या कि संसार के सुख सुविधाओं के लिए मैंने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं की है, और ना ही मैंने आलसी होकर के उन्हीं से सब कुछ करवाने के लिए अपना आत्म कल्याण मुझे स्वयं करना पड़ेगा। भक्ति ऐसी हो, श्रद्धा ऐसी हो जिसमें कि हम उन पर डिपेंड भी नहीं है, और जिनमें कि हम उनके माध्यम से और अपने संसार को भी नहीं साधते हैं। सात्विक श्रद्धा वो है कि जा विधि राखे राम ता विधि रहिए, सुख मिलता है तब भी एक्साइट नहीं होते हैं, दुख मिलता है तो डिप्रेस नहीं होते हैं। दोनों स्थितियों में वास्तविक श्रद्धा तो वो है, धीरे धीरे इसी श्रद्धा का अभ्यास करना चाहिए कि मुझे संसार की सुख सुविधाएं मिलें तब भी मैं अहंकार नहीं करूंगा, और मुझे अगर सुख सुविधाएं ना मिलें तो मैं संक्लेश नहीं करूंगा। मेरी श्रद्धा सच्ची वही कहलाएगी जिसमें मैं हर्ष विषाद कमती करता हूँ, अहंकार और संक्लेश दोनों ही कम करते चले जाता हूँ, वास्तव में तब कहलाएगी कि हाँ हमारी श्रद्धा सात्विक है। हम कुछ चाहते नहीं हैं लेकिन हम अपने जीवन में जो मलिनताएं हैं उनको दूर करना भर चाहते हैं, वो हमें खुद करनी है। भगवान तो दर्पण के समान है, इसलिए भगवान की मूर्ति को आदर्श माना है, गुरुओं को आदर्श माना है। आदर्श के मायने दर्पण कहलाता है, दर्पण को, मिरर को आदर्श भी कहते हैं संस्कृत में। तो आदर्श के मायने आइडियल, जिसमें कि हम अपने को देख करके अपनी खामियों, अपनी कमियों, अपनी मलिनताओं को वॉश आउट करते हैं, बस इतने ही वो हमारे लिए सहयोगी हैं। तो अपन भगवान के सामने जाके अपनी श्रद्धा से क्या कहते कि मोरी तो से बनी ताते करत होगा। ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ही हमारी सब बना देंगे, लेकिन ये तो भक्त की भाषा है। वो कह रहा है कि और संसार में मैं किसी के पास चले जाऊं, मैं अपनी मलिनताओं को दूर नहीं कर पाऊंगा, आपके सानिध्य में आकर के मैं अपनी मलिनताओं को दूर कर पाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं कि मोरी तो से बनी। कहीं ऐसा नहीं समझना भगवान के आप खो सब कुछ हम आओ करने करें तो हम ही, तो फिर बाद में हम कहते कि मुझ कारज के कारण सुआप, धोखे में नहीं लियो भगवान कि आप खो करने करें तो हम ही, आप तो सिर्फ कारण बनोगे। ये हमारी श्रद्धा की कसौटी है भैया। दृष्टि की निर्मलता होने पर ऐसे ही विचार आना चाहिए अपने भीतर कि नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ से और अपने जीवन का कल्याण करूंगा, लेकिन मेरे पुरुषार्थ को दिशा देने वाले, मुझे कहीं चूक जाने पर संभालने वाले कौन हैं? तो मुझे ठीक दिशा देने वाले और मुझे सहारा देने वाले मेरे वीतरागी भगवान और वीतरागी गुरु और वीतरागताओं को उपदेश देने वाले शास्त्र हैं, ये मुझे हेल्पफुल हैं, मुझे मदद करने वाले हैं, पर चलना तो मुझे ही पड़ेगा। और हमने पिछले दिनों इतनी लंबी यात्रा और धीरे धीरे करके यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमने ये भी समझ लिया है कि जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल होती है, हमारे अंदर कोई भय, सांसारिक भय नहीं रह जाता है, ना ही हम किसी तरह की कोई सांसारिक आकांक्षा करते हैं। ऐसी आकांक्षा जिससे हमारा कल्याण होता है हम छोड़ देते हैं। हमारे जीवन को चलाने के योग जितनी आकांक्षाएं हैं उनको तो हम रख लेते हैं, पर हम अपने अकल्याण की कोई आकांक्षा नहीं करते हैं। हम सच्चे रास्ते पर स्वयं चल रहे हैं, हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है। जिनकी दृष्टि निर्मल है उनके हम अब शरीर की तरफ नहीं देखते और शरीर की मलिनता से घृणा नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ गुणों में प्रीति रखते हैं। वैसी हमारी दृष्टि हो गई है और सैकड़ों रास्ते हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमने अपनी बुद्धि और अपने विवेक से जो रास्ता चुन लिया है हम उसी रास्ते पर जाते हैं। अन्य रास्तों की हम न निंदा करते हैं न प्रशंसा करते हैं। हाँ, मुझे जिस रास्ते पर जाना है उसे मैं श्रेष्ठ मान के जा रहा हूं, लेकिन अन्य जो रास्ते हैं वे श्रेष्ठ नहीं हैं, या कि वे खराब हैं, या कि वे बुरे हैं, मुझे ऐसा कहने का वक्त ही नहीं है। मुझे इस तरह की भावना मेरे अंदर है ना प्रशंसा करने की है कि नहीं, मैं भले ही इस रास्ते से जा रहा हूं लेकिन आप चाहें तो इस रास्ते भी जा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत खराब रास्ता है ऐसा भी नहीं, ये बहुत अच्छा रास्ता है ऐसा भी नहीं, मैं तो सिर्फ इस रास्ते पर जा रहा हूं, मेरी बुद्धि मेरे विवेक से मैंने ये रास्ता चुना है। ऐसी जिसकी दृष्टि हो जाती वही निर्मल दृष्टि है। और रास्ते में चलते चलते और कोई साधर्मी अपन को उसके दोष तो देखना नहीं है पर दिख जाते हैं, तो हम उन्हें दूर करने की कोशिश तो करते हैं पर उसे उनके दोषों को उसे गिराने के लिए कहीं फैलाते नहीं हैं। ऐसी हमारी दृष्टि निर्मल हो गई है। पिछले दिनों आपने अभ्यास तो किया होगा, थोड़ी कमी तो आई होगी, पहले मन कर जाता होगा कि फलाने के दोष देखो तो कैसे हैं, और फिर कभी कभी उन दोषों को फैलाने की इच्छा भी हो जाती होगी। अब तो थोड़ा मन बदल गया होगा कि नहीं, दोष देखना नहीं है, दिख जाए तो किसी से क्या करना, अपने को भी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा करके हम आगे बढ़ने लगे हैं क्या, या कि अभी भी हमारा इंटरेस्ट उसी सब चीजों में है। तो अपनी दृष्टि को और निर्मल बनाएं। कोई अगर सच्चे रास्ते पर चलते हुए हमारा साधर्मी गिर जाता है, चूक जाता है, तो हम उसे संभाल लेते हैं, या स्वयं भी, हाँ स्वयं भी हम कभी किसी चीज को छोड़ करके और पुनः उसे ग्रहण करने का भाव कर लेते हैं, तो वो भी तो हमारा पतन ही है, वो भी तो हमारा गिर जाना ही है। क्रोध में गिर जाना, लोभ में गिर जाना, मायाचारी में और अहंकार में गिर जाना, इसको गिर जाना बोलिएगा आप, अपने परिणामों से गिरने का नाम ही तो कषाय करना है। तो अब हम वहां भी अगर गिर जाते हैं कभी तो हम अपने को संभाल लेते हैं, दूसरा कोई कषाय करता है तो उसको भी हम कहते हैं कि भैया कषाय करके अपना पतन मत करो और हम तुम्हारी कषाय में शामिल नहीं होंगे, संभव हुआ तो आपको कषाय से मुक्त करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हम उसको भी। कोई व्यक्ति श्रद्धा से डगमगा जाता है, कोई व्यक्ति ज्ञान से डगमगा जाता है, कोई आचरण से, या स्वयं भी हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ने लगती है, ज्ञान हमारा मिथ्या की तरफ जाने लगता है, या कि हमारा आचरण से हम विचलित होने लगते हैं, तो अपने को और दूसरे को सबको संभाल लेना, यहाँ तक जो है हमने पिछले दिनों समझा। ये भी समझा कि जब कोई सच्चे रास्ते पर चले, हमारा साधर्मी है, तो हम उसके सम्मान की रक्षा करेंगे, हम उसको हृदय से लगाएंगे, हम उसको प्रेम देंगे, वात्सल्य देंगे, लेकिन हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ इतना ही भाव है धर्म वात्सल्य है। मैं क्योंकि वो भी धर्मात्मा है इसलिए वो धर्म का पालन कर रहा है और मैं भी उसी धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे उस अपने साधर्मी की मदद करनी चाहिए, कम से कम उसके प्रति अपेत कैत्वा बिना किसी छल कपट के प्रेम भाव तो रखना ही चाहिए। मदद ना कर सकें तो कोई बात नहीं, लिखा तो यही है कि पहले तो निस्वार्थ प्रेम और फिर यथा योग प्रतिपत्ति, अर्थात जितनी बन सके उसकी आवश्यकता पड़ने पर, विपत्ति आ जाने पर उसकी मदद करना, उसका कभी अपमान होने लगे तो उसके अपमान से उसे बचाना, उसके सम्मान की रक्षा करना, स्वयं तो अपने साधर्मी का कभी अपमान नहीं करना, उसके सम्मान में अपना सम्मान मानना, उसके अपमान में अपना ही अपमान हुआ है मानो, ऐसा मानना। इस तरह का जिसका विचार होता है उसी की दृष्टि निर्मल हुई। ये कसौटी है भैया अपने भीतर झांक के देखने की कि विचार कैसे आते हैं, जैसे विचार होंगे समझना वैसी ही हमारी दृष्टि है, अगर दृष्टि भली है तो विचारों में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा, उसी चीज को हम फिर दूसरे ढंग से सोचने लगते हैं। जब हमारी दृष्टि खराब होती है किसी के बारे में तो हम गलत सोचने लगते हैं उसके बारे में, जब हमारी दृष्टि अच्छी होती है तो उसी आदमी के बारे में हम भला सोचने लगते, कोई हमसे उस आदमी के बारे में बुरा भी कहता तब भी हम नहीं मानते, हो ही नहीं सकता ऐसा, हम तो नहीं सोचते ऐसा, हम तो ऐसा देखते हैं उसके अंदर। किसी एक ही चीज के बारे में दो लोग अलग अलग से अलग अलग ढंग से सोच सकते हैं, क्यों, जिसकी जैसी दृष्टि होगी। अच्छा बताओ युधिष्ठिर महाराज अखो अगर पूरे संसार में भेजो कि कौन बुरा आदमी लवा ले आओ, मिलेगा उनको? युधिष्ठिर महाराज को कौन बुरा नहीं मिलेगा, और दुर्योधन महाराज जावे तो कौन भलो आदमी नहीं मिले उनको? हाँ, अब उनकी दृष्टि वैसी है, दोनों महाराज हैं, दुर्योधन महाराज भी है युधिष्ठिर महाराज भी है, लेकिन जिसकी जैसी दृष्टि है संसार में उसे वैसा ही सब दिखाई पड़ता है। अपने विचारों से अपने भीतर झांक के देखें कि मेरे भीतर कैसे विचार आते हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि मेरी दृष्टि ऐसी है तो उसको हम ठीक कर लेवे। विचारों को ठीक करके दृष्टि को ठीक करें या दृष्टि को ठीक करके विचारों को ठीक करें, दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। इतनी बात अपन समझ चुके थे और वात्सल्य के बारे में बहुत सारे और उदाहरण भी हैं, एक उदाहरण जो रह गया था मैं आपको वो और कहूँ, आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन का है। मैंने सुना था कहीं पर, कहीं पढ़ने में नहीं आया मुझे, ऐसा किसी ने मुझे सुनाया था कि जहाँ वो चतुर्मास कर रहे थे वहीं से कुछ दूरी पर एक और महाराज चतुर्मास कर रहे थे, चतुर्मास में उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि संलेखना लेने की स्थिति बन गई, तो संलेखना तो उनकी चलने लगी लेकिन संलेखना के चलते और उनको प्यास की बाधा बहुत सताने लगी, जब तक उनसे सहन करते बना उन्होंने प्यास को सहन किया, फिर उसके बाद तो कहना शुरू कर दिया कि मेरे से सहन नहीं होता, मैं तो अब इस पद को भी चाहो तो छोड़ देता हूं पर मुझे तो पानी की प्यास बहुत लगी है, लाओ मुझे, एक बार में शांति नहीं होती, मैं दो या तीन बार पानी लेऊंगा, जबकि त्याग कर दिया है, एक ही बार अन्न जल ग्रहण करेंगे, पर क्या करें, कर्मों का ऐसा तीव्र उदय आ गया कि मांगने लगे जाए तो जाकर के शांति सागर जी आचार्य महाराज के पास सारी बात सुनाई, तो थोड़ी देर सुनते रहे, फिर देखो संलेखना लेने वाला तीर्थ जीवित तीर्थ कहलाता है। कोई व्यक्ति अगर किसी तीर्थ यात्रा पर निकला हो और मालूम पड़ जाए कि यहां पर पास में कोई संलेखना लेने वाला है, ले ली है संलेखना, तो कहते तीर्थ यात्रा पर बाद में जाना, पहले उस जीवित तीर्थ के दर्शन करो। इतनी बड़ी मानी गई है संलेखना लेने वाले साधु की स्थिति। तो आचार्य शांति सागर जी ने मालूम क्या कहा, पीछे उठा करके और परोक्ष में और प्रणाम करते हुए कहा कि जाओ उनसे जाकर के कहना कि आपकी तो आपका धैर्य अद्भुत है, आपका साहस अद्भुत है, आपकी सहनशीलता अद्भुत है, आज के इस विषम काल में भी आपने संलेखना धारण करी है। आचार्य शांति सागर जी आपको पीछे उठा करके बारंबार नमोस्तु करते हैं। बस इतना कह देना। कहां गए थे पूछने के लिए कि कुछ सलूशन बता दो, उनको प्यास लगी है, क्या करें, दे देवे कि न देवे, और कहां ये दूसरी ही बात कह रहे हैं, लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ही लोगों ने जाके कहा कि हम आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास से आ रहे हैं, उन्होंने जो है ऐसा ऐसा कहा है कि अद्भुत है आपका धैर्य, आपका साहस, आपकी सहनशीलता, आपने ऐसी महान संलेखना धारण करी। आचार्य शांति सागर जी आपको पीछे उठा करके प्रणाम करते। बस जैसे ही उन महाराज ने ये बात सुनी और परिणामों में परिवर्तन होने में देर नहीं लगती, हृदय परिवर्तन हो गया। अरे आचार्य शांति सागर इतने बड़े तपस्वी जिनने अपने मने दस पूरे जीवन काल में, कभी कहूंगा आपको पूरे जीवन काल में 25 वर्ष के पूरे जीवन काल में 10,000 उपवास किए जिन्होंने, 10,000, वो मुझे जो है प्रणाम कर रहे हैं और मैं पानी मांग रहा हूं, धिक्कार है मुझे। बस अब लोगों से कहना शुरू कर दिया, मैं मांगू पानी तो दे मत देना, मुझे डांट देना, मेरे कर्म के उदय में मैं पानी मांगता हूं, मेरी आत्मा में वैसी भावना नहीं है, मेरे बहुत तीव्र कर्म का उदय है, अगर मैं पानी मांगू तो तुम देना मत, और डांट देना, मुझे समझा देना। लेकिन अब मैं नहीं पीऊंगा। 3 दिन तक उन्होंने संकल्प पूर्वक त्याग किया, बहुत शांति से उनकी संलेखना पूर्वक और मरण को वो प्राप्त हुए 3 दिन के बाद। बताइएगा ये परिणाम कैसे संभले, वात्सल्य की वजह से। अगर उस समय हम ये कह देते कि हो पिला दो पानी, अब काय को लईती समाधि, जब होत नहीं है तो, ऐसा नहीं कहा, वात्सल्य है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति उस वात्सल्य से चाहे तो दूसरे के हृदय को भी परिवर्तित कर सकता है भैया, इसलिए अपने साधर्मी के प्रति अगर वो कितना भी खोटा भी है तब भी प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँ, पापी से पापी व्यक्ति भी है अगर, तब भी पाप से घृणा करने के लिए लिखा है, पापी से घृणा करने के लिए नहीं, उसको भी उसके जीवन को भी सुलटाने के लिए, और हमें निरंतर उसके प्रति सद्भावना ही रखनी चाहिए। वात्सल्य कहो या सद्भावना कहो, हम उसके प्रति भी सद्भावना ही रखें, दुर्भावना क्यों रखें, वो तो वैसे ही पतित हो रहा है और हम अपनी दुर्भावना रख करके अपना पतन और क्यों करें। इसलिए ये भी हमारी दृष्टि की निर्मलता है कि हम सबके प्रति सद्भावना, प्रेम और वात्सल्य, विशेष रूप से साधर्मी के प्रति वात्सल्य तो उमड़ना ही चाहिए अपने मन के अंदर, और उसकी मदद करनी चाहिए। आज अपन इसके आगे एक कदम और रख लेते हैं और पूरी बात हो जाएगी। 8 अंग होते हैं जिनमें से अपन ने क्रम क्रम से उन 8 अंग कहो या 8 गुण कहो, जैसे शरीर में 8 अंग हैं, ऐसे ही तो जिसके प्रति दृष्टि निर्मल हो जाती है ये 8 गुण आ जाते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और अब अंतिम है प्रभावना। अज्ञान तिम्रव्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महात्म प्रकाशा स्यात् प्रभावना विज्ञारय मारूढ़ो मनोरा पहेसु हनदिजो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। समंत भद्र स्वामी व्यवहार से परिभाषा बना रहे हैं कि अज्ञान तिम्रव्याप्ति मपाकृत, अज्ञान का अंधकार इस संसार में बहुत छाया है, हम भी अज्ञानी हैं और संसार में बहुत जीव हैं जो कि उस अज्ञानता से पीड़ित है। कोई व्यक्ति धन पैसे से की कमी से पीड़ित हो सकता है, कोई व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता इसलिए पीड़ित है। भैया ये तो बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन जो अज्ञान से पीड़ित हैं वो तो पूरा संसार है। इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञान तिम्र व्याप्ति, अज्ञान का अंधकार फैला है, किसी को भी अपने आत्मा का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, तब क्या करना, अपाकृत्य यथा यथम। तो जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी आपकी योग्यता, जितना आपको शक हो, जितना आप कर सकें, उतना इस अज्ञान के अंधकार को स्वयं के भी और आसपास के भी अज्ञान के अंधकार को दूर करने की कोशिश करना, जिससे कि जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना हो। यही जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना कहलाएगी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, विचार है मारूड़ो मनोरा वही सुहनदि जो चेदा, जो विद्या के रथ पर अर्थात सम्यक ज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वयं अपने जीवन में अंगीकार करके अपने पांच इंद्रिय और मन के मनोरथ को, मनोरथ कह रहे हैं वो, उसकी बलगाएं अपने हाथ में ले लेता है। सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने इंद्रिय और मन को जिसने काबू में कर लिया है, वास्तव में वही जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना कर सकता है। इस तरह देखो, दो प्रकार से प्रभावना हो सकती है, एक बाह्य में और एक अंतरंग में। आज वर्तमान में बाह्य प्रभावना का दौर है। हाँ, ऐसा कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, अपन बाह्य प्रभावना को ही सब कुछ मान करके और बड़े प्रफुल्लित हैं कि बस बहुत देखो, एक से एक बढ़िया से बढ़िया भव्य पेंडाल, एक से एक बढ़िया से बढ़िया डेकोरेशन, और बड़े से बड़े ठाट वाट के साथ, बड़े नाच गान के साथ झूम करके भगवान की भक्ति, बड़ी बड़ी पूजा। हम सोचते हैं ये कर लिए हमने, बहुत उत्सव कर लिए, अगर बाहर में हो गई प्रभावना। नहीं, ये आधी प्रभावना है। आधी कह रहा हूं, मतलब बाहर बाहर से होने वाली। आज अपन इसी को सब कुछ मान बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, लेकिन यही मात्र पर्याप्त है ऐसा नहीं। अंतरंग में भी हमारे प्रभावना होनी चाहिए। वास्तव में तो अंतरंग की प्रभावना ही श्रेष्ठ है। कथनी और करनी जिसकी एक हो जाती है, वास्तव में प्रभावना वही कर सकता है। वास्तव में वही अंतरंग प्रभावना है जिसमें कथनी और करनी एक हो जाती है। आज हमारे कथन में और करने में बहुत डिफरेंस हो गया है। हम कहते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन करते उतना बढ़िया नहीं है। हम दिखते बहुत बढ़िया हैं, लेकिन होते उतने बढ़िया नहीं हैं। हाँ, देख लो, ऐसा नहीं है क्या? अपने भीतर झांक के देखना, और कहीं नहीं, किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं अपन। अपन तो अपना अपना अवलोकन कर रहे हैं, आत्मावलोकन कर रहे हैं कि इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा, कि जैसा हम बाहर प्रदर्शित करते हैं, क्या हमारे अंतरंग में भी उतनी ही ज्योति आई है, उतना ही ज्ञान का प्रकाश आया है जितना कि हम बाहर करते हैं। एक समय हुआ करता था आगरे के अंदर, आज भी इक्का चलता है, इक्का टांगा, और अगर स्टेशन पे उतर के या बस स्टैंड पे उतर के आपने 5:30 और 5 बजे किसी टांगे वाले से कहा है कि भैया जरा जल्दी चलना धर्मशाला तक, जरा जल्दी चलना धर्मशाला तक, फौरन कहेगा हाँ जैन साहब, हाँ जैन बाबू चलता हूं, फौरन कहेगा वो। कैसे समझ गया वो? वो जानता है कि 5:30 बजे धर्मशाला पहुंचने की जल्दी तो जैनी ही कर सकता, क्योंकि उसके रात्रि भोजन का त्याग होता है। ये उसकी शाख है, उसकी प्रतिष्ठा है, ये उसकी अंतरंग प्रभावना है जो कि बाहर में भी प्रकट होती है। किसी को अगर नल में छन्ना लगाते देख लिया है, फौरन कह सकता है जैनी आदमी है। ये हमारी पहचान हुआ करती थी, हमारे अंतरंग की ये झलक हुआ करती थी, हमारी बाह्य आचरण, हमारी करनी और कथनी में ऐसा एक वेगता हुआ करती थी। हुकम चंद जी साहब इंदौर के सेठ जी के जमाने में और उस समय जैनी लोग एक तो गवाही नहीं देते थे, और अगर कोई जैन व्यक्ति की गवाही हो जावे तो सारा केस बदल जाता था इंदौर के कोर्ट में। ये बात एक बार हो चुकी है हुकम चंद जी के टाइम में कि किसी जैनी ने बहुत मुश्किल में और गवाही दी थी, क्योंकि प्राण झूठी गवाही से जा रहे थे दूसरे के, तब जाके खड़े होके कहा था कि बात ऐसी है जो दूसरे गवाही दे रहे हैं वो झूठी गवाही है। तो जज ने ये स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि जैनी आदमी है झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए बाकी गवाहियां सब खारिज की गई, ये गवाही मान ली गई। एक समय शाख थी हमारी, ये कहलाएगी अंतरंग में हमारी प्रभावना की। ऐसे हमारी कहना चाहिए पहचान होनी चाहिए, लेकिन आज हमने अपनी प्रामाणिकता, अपनी पहचान अपने आप खो दी है। जब शहाबुद्दीन उनके इंदौर के अंदर आए बोहरा समाज के, तब एक बहुत बड़ा भोज होना था जिसमें मांसाहार दिया जाना था। सब अहिंसक समाज मुश्किल में पड़ गई। जैन समाज के कुछ लोग मंच पर उनके पहुंचे और शहाबुद्दीन से कहा कि कृपा करके इतना तो मत करिएगा, सामूहिक रूप से टनों टन मांस आएगा और लोग ऐसे बैठ करके खाएंगे, ये मत करिए इंदौर के अंदर। आपको अपने अंदर अंदर जो भी करना है ऐसे सामूहिक बाहर मत करिए। वे सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा चूंकि अहिंसा में विश्वास रखने वाले आप जैन लोग आए हैं, इसलिए हम आपका विचार का सम्मान करते हैं, और उसी भरे मंच से ये डिक्लेयर किया कि हमने जो सामूहिक भोज रखा था हम उसे कैंसिल करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हम जैन समाज के लोगों से निवेदन करते हैं कि क्या वे अपने समाज में जाकर के और ये नियम बना सकेंगे कि वे कभी सामूहिक रूप से रात्रि भोजन नहीं करेंगे। सबके चेहरे नीचे हो गए थे। उनने तो हमारी बात मान करके कैंसिल कर लिया, लेकिन हमारे वे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वे उस खुले मन से ये नहीं कह सके कि हाँ हम सौगंध लेते हैं कि हम सब जो है कभी भी अपने घर में चुपचाप बैठ के रात में खाते होंगे तो खाते होंगे, लेकिन समूह में बैठ करके हम रात में नहीं खाएंगे। ये हमारी शाख है, ये हमारी प्रभावना है धर्म की। भैया कथनी और करनी में हमारे अब बहुत डिफरेंस, और हम प्रभावना चाहते हैं कि प्रभावना हो तो प्रभावना पेंडाल और तामझाम से नहीं होती। प्रभावना तो अपने परिणामों की निर्मलता से होती है, हमारे उठने बैठने आने जाने और हमारे व्यवहार से झलकना चाहिए। अकेले तिलक लगा करके और सफेद कपड़े पहन लेने से या गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। धर्मात्मा तो होता है तब जबकि उसके बोलने में मोती झरते हों, जबकि उसके चलने से किसी को तकलीफ न पहुंचती हो, जबकि उसके व्यवहार में संतुलन हो। वो किसी से प्रभाव किस चीज का पड़ता है, देखो भैया इनकी दुकान कितनी बढ़िया है, इनके यहाँ जाओ तो कितने प्रेम से बात करते, कभी हमने इनको अपने नौकरों से भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा है। ये कहलाएगा कि हाँ आपने कोई प्रभाव ना की है, ये जैनी लोग हैं इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं, ये कभी किसी जीव की हिंसा नहीं करते, ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। गांधी जी हमेशा कहते रहे कि तुम अपने को वैष्णव मानते हो तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, जो दूसरे की पीर जानता है दूसरे की पीड़ा जानता है मैं तो उसे वैष्णव कहता हूँ, इसी तरह मैं तो उसे जैन कहता हूँ जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के उसकी पीड़ा दूर करने का उपाय करता है। अपने जीवन में कम से कम दूसरे की पीड़ा दूर न कर सके तो किसी को पीड़ा देने का विचार तक नहीं करता है, तब मानिएगा कि हाँ सचमुच हमने हमारे उठने बैठने आने जाने बोलने चालने से धर्म झलकना चाहिए। तब कहिएगा कि हाँ हमने सच्ची प्रभावना करी। ज्ञान के माध्यम से प्रभावना होती है, श्रद्धा के माध्यम से हमें रोज मंदिर जाते और शांत परिणाम देख करके दूसरे का मन बनेगा कि हाँ देखो ये मंदिर जाते हैं, कैसी इनकी श्रद्धा है, कैसे इनके शांत परिणाम हैं। और अगर हम मंदिर जाते हैं और हमारे बड़े कठोर परिणाम हैं, पिघलते नहीं, हमारे बड़े क्रोध के परिणाम हैं, तो कोई व्यक्ति की श्रद्धा भगवान पे नहीं बनेगी, बल्कि उल्टी बनी हुई है तो टूट जाएगी। दूसरे को हम अपनी श्रद्धा से दूसरे की श्रद्धा मजबूत कर सकते हैं भैया, ये प्रभावना। हम अपने ज्ञान से दूसरे के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की ललक पैदा कर सकते हैं। अकलंक और निकलंक स्वामी कैसे हुए हैं, एक पाठी दो पाठी थे। अकलंक महाराज को एक बार में कोई चीज सुन ले तो याद हो जाती थी, निकलंक को दो बार सुनने पर याद होती थी। बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने जाते थे राजा महाराजा के पास में, वहां पर कोई विद्वान कुछ बात कहता था तो अकलंक स्वामी फौरन उस बात को ज्यों का त्यों दोहरा देते थे कि ये तो मुझे पहले से ही मालूम है, क्यों उनको सुनते ही साथ याद हो जाता था। और कहते अगर विश्वास ना हो तो निकलंक से पूछ लो, इसको भी मालूम। तो निकलंक ने दो बार सुन ली, एक बार उनसे सुनी और एक बार इनसे, सुबह बोल देते। और दोनों भाई जाकर के और बड़े से बड़ा शास्त्रार्थ जीत करके आ जाते थे ज्ञान के माध्यम से। इस तरह उन्होंने, और अकलंक स्वामी ने, निकलंक स्वामी ने तो अपनी जान ही दे दी थी रक्षा के लिए पहले, और अकेले निकलंक बने बचे थे जिन्होंने तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा है। उस समय में छठ दर्शन के साथ में जैन दर्शन को कंपेयर करके उन्होंने जितना सूक्ष्म न्याय का वर्णन किया है वैसा और किसी ग्रंथ में देखने में नहीं आता। ज्ञान के माध्यम से भी हम धर्म की प्रभावना करते हैं, अपने चारित्र व्रत नियम संयम के माध्यम से। शांति सागर जी महाराज ने अपने चारित्र के माध्यम से और बहुत बहुत धर्म की प्रभावना, इसलिए तो आज अपन कहते हैं कि सारी परंपरा आचार्य शांति सागर जी महाराज से चली है, क्योंकि उनने इस तरह का आचरण सिंह विक्रीडित नाम का तप किया उन्होंने दो दफे, जिसमें क्या करना पड़ता, एक उपवास एक आहार, दो उपवास एक आहार, तीन उपवास एक आहार, चार उपवास एक आहार, पांच उपवास, पंद्रह उपवास एक आहार, फिर पंद्रह उपवास फिर एक आहार, चौदह उपवास एक आहार, तेरह उपवास एक आहार, ऐसे बढ़ते जाना और घटते ये सिंह विक्रीडित नाम का तप कहलाता। वो दो बार अपने जीवन में किया, चंद्रायन व्रत किया, चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती और बढ़ती जाती वैसे जो है एक कला खुली एक ग्रास लेके आ गए, दो कलाएं खुली दो ग्रास, तीन कलाएं तीन ग्रास, बस इतना ही पंद्रह ग्रास, फिर चौदह तेरह बारह, इस तरह से चंद्रायन ऐसे व्रत इनके माध्यम से उस समय अपने तपस्या के माध्यम से अपने त्याग के माध्यम से भी हम चाहें तो धर्म की प्रभावना कर सकते, लेकिन ये सब अंतरंग प्रभावनाएं हैं। अकेले पैसे के माध्यम से तो करते ही हैं अपन, लेकिन अपने श्रद्धा अपने ज्ञान, देखो पूजा और भक्ति के माध्यम से प्रभावना हुई थी कि नहीं हुई थी, मैना सुंदरी ने क्या किया था, सिद्ध चक्र मंडल विधान रचा था, कैसे निर्णय परिणाम रहे होंगे कि उसके माध्यम से खुद श्रीपाल और उनके जो साथ में 700 कोड़ी थे और उनका भी कोड़ नष्ट हो गया था, और आसपास जो है सबको भगवान की भक्ति में श्रद्धा जागृत हो गई थी। तो ऐसी भक्ति करें जिससे कि दूसरे के मन में भी भक्ति और श्रद्धा जागृत हो जाए भैया। ये सब उदाहरण हैं जो कि हमारे अपने प्रभावना के लिए कार्यकारी हैं, हमें ऐसी प्रभावना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बाह्य प्रभावना तो अपन खूब कर लेते हैं, हम लोग आबादी हो गए हैं शरीर और वाणी से धर्म करने के, अब हमें अपनी थोड़ी आदत बदलनी चाहिए। शरीर और वाणी से तप करने के साथ साथ मन से भी धर्म होना चाहिए, और जिसके मन में धर्म होता है, लिखा है कि वो अपने मारने वाले को भी बचाने का प्रयास करता है, मारने का प्रयास नहीं करता है, तो समझना कि धर्म उसके मन में आ गया है। ठीक श्री कृष्ण नारायण की तरह कि जब उनको बाण लग गया था जरत कुमार का, तब बलदेव पानी लेने गए थे, लौट के नहीं आ पाए थे, तब जरत कुमार से कहा कि भैया तुम जल्दी से भाग जाओ यहां से, जितनी दूर बने उतनी दूर भाग जाओ, जबकि उन्हीं के बाण से और वे मरण को प्राप्त होने वाले थे, विष बुझा बाण था, धोखे से लग गया था। तब क्या कह रहे हैं अपने मारने वाले को कि भाग जाओ जितनी दूर भाग सको। बलदेव भैया आ गए और उनको मालूम पड़ गया कि तुम्हारा बाण मुझे लगा है तो फिर तुम्हारे प्राण नहीं बच पाएंगे। ये कहलाता है जिसके मन में धर्म है। हमारे मन में अगर धर्म है तो हम दूसरे मारने वाले को भी बचाएंगे, मारेंगे तो है ही नहीं बल्कि बचाने की भावना रखेंगे। तो भैया ऐसे अगर अपने अंतरंग में हमारे धर्म आ जाए, ज्ञान आचरण और श्रद्धा, तो इसके माध्यम से ही हम वास्तव में प्रभाव न कर पाएंगे। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि प्रभाव न कर पाओ तो मत करना, इतना ही ध्यान रखना कि अपने द्वारा कोई अप्रभावना ना हो जाए, यही बहुत बड़ी प्रभावना है। अपने जीवन को ऐसे बनाना जिससे कि अप्रभावना ना हो। अप्रभावना नहीं हुई यानी हो गई प्रभावना, अलग से प्रभावना करने की भी आवश्यकता नहीं, अपने जीवन को अच्छा बनाने से ही प्रभावना हो जाती है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर, हे गुरुवर।